बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अली अब्बास रिज़वी, प्रोग्राम अंदाज़े जहाँ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि जहाँ भी होंगे इंशाल्लाह हमेशा की तरह आज भी बख़ैर व आफ़ियत होंगे। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है हिंदुस्तान में लोकसभा इंतखाबात। इस मौजू पर गुफ्तगू होगी मोज़ज़ मेहमानों से, मगर मुख्तसर से वक्फे के बाद। या नाज़रीन, आप जैसा कि जानते हैं कि हिंदुस्तान के तारीख़ के तवील तरीन इंतखाबी मराहिल का कल आठवां मरहला, यानी जो 7 अप्रैल से लोकसभा के इंतखाबात के मराहिल शुरू हुए थे, अब उसका आठवां मरहला कल अंजाम पाएगा, यानी पोलिंग के ताल्लुक से। और कल मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में 68 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसमें मुल्क की सबसे अहम रियासत उत्तर प्रदेश की भी मुख्तलिफ सीटें शामिल हैं, जिनमें कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी भी अमेठी से खड़े हैं और उनकी भी किस्मत का फैसला कल होना है। इस दौरान कहा यह जा रहा है कि जैसे जैसे इंतखाबी मराहिल अपने इख्तितामी मराहिल तक पहुंच रहे हैं, हिंदुस्तान में सियासी दर्ज हरारत उतने ही ज़्यादा ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जो बात देखने में आ रही है वो ये एक के बड़े बड़े रहनुमा और बड़ी बड़ी सियासी जमातों के लीडरान बजाय ये कि अपनी पार्टी के मंशूर पेश करें और मुल्क की तरक्की और पेशरफ की बातें करें, इस सिलसिले में कुछ अपने अहदाफ और मकासद बयान करें, देखा यह जा रहा है कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में, एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करें, ज़ातियात पर हमला, और तो और बाज़ बयानात तो ऐसे हैं जो समाज को तोड़ने की कोशिश के तौर पर भी देखे जा सकते हैं। क्या इस तरह की सूरत हाल में हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा? बहरहाल सारी ही जमातें, जो बड़ी और कौमी सतह की जमातें हैं, ये दावा कर रही हैं कि इस बार हुकूमत उनकी बनेगी, लेकिन अगर गैर जानिबदार मुबस्सिन से पूछा जाए तो उनका कहना यही है कि एक हंग पार्लियामेंट वजूद में आने वाली है। तो बहरहाल इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने मोज़ज़ मेहमानों से, मगर हमारे साथियों ने यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार की, पहले उसे देखते हैं, फिर आपकी खिदमत में और अपने मेहमानों की खिदमत में हाज़िर होते हैं।
हिंदुस्तान में पार्लिमानी इंतखाबात अपने मंतखी अंजाम की जानिब बढ़ रहे हैं। 9 मरहलों में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के 7 अहम मरहले अंजाम पा चुके हैं और अब सिर्फ 2 मरहलों के इंतखाबात होना बाकी हैं। यूं कहा जा सकता है कि हिंदुस्तानी पार्लियामेंट की 60% नशस्तों का फैसला वोटिंग मशीनों में बंद हो चुका है और 40% के लिए मार्का जारी है। 7 अप्रैल से शुरू होने वाले हिंदुस्तान के पार्लिमानी इंतखाबात दुनिया के सबसे बड़े इंतखाबात हैं, जिसमें तकरीबन 81 करोड़ 45 लाख अफराद अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के अहल हैं। इन इंतखाबात की एक अहम बात यह है कि तकरीबन 20% वोटर पहली बार अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदुस्तान में आमतौर पर वोटिंग की शरह 55% तक रहती है। इतने बड़े जमहूरी अमल में तकरीबन 5 मिलियन लोग इंतजामी फराइज अंजाम दे रहे हैं और हज़ारों अफराद को इस अमल की सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया है। पहले मरहले में 7 अप्रैल को वोट डाले गए थे और पोलिंग का आगाज़ मुल्क के दूर दराज और कम आबादी वाले इलाकों से हुआ, जिनमें आसाम, त्रिपुरा, उसके नवाही इलाके शामिल थे और इस मरहले में 6 नशस्तों के लिए पोलिंग हुई। दूसरे मरहले में हिमालय रीजन के अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर के बाज़ इलाकों में पोलिंग हुई, जिसमें 7 नशस्तों की किस्मत का फैसला वोटिंग मशीनों में महफूज किया गया। 10 अप्रैल को पार्लिमानी इंतखाबात के पहले बड़े मरहले का आगाज़ हुआ, जिसमें 92 नशस्तों के लिए पोलिंग हुई। 17 अप्रैल को हिंदुस्तान के पार्लिमानी इंतखाबात का सबसे बड़ा और अहम मरहला अंजाम पाया, जिसमें मुल्क की 12 रियासतों की 121 नशस्तों के लिए 16.5 करोड़ से ज़्यादा लोग वोट डालने के अहल थे। 5वें मरहले में बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल और कर्नाटक में पोलिंग हुई। 5वें मरहले में कुछ खास चेहरे हैं जिनकी किस्मत EVM मशीन में बंद हुई और इनमें 5वें आजानी वजीर आजम इंदिरा गांधी की बहू मोनिका गांधी, साबिक वजीर आजम देवगौड़ा, यूनियन वजीर वरप्पा मोइली और बिहार के साबिक वजीर आला लालू प्रसाद की सबसे बड़ी साहबजादी मीसा भारती शामिल हैं। 17 अप्रैल को हिंदुस्तान के इंतखाबात का छठा और पार्लिमानी नशस्तों के एतबार से दूसरा बड़ा मरहला अंजाम पाया। इस मरहले में हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत 12 रियासतों की 117 सीटों पर ज़बरदस्त वोटिंग हुई। بدھ 30 اپریل کو ہندوستان کی 7 ریاستوں یعنی گجرات، بہار، اتر پردیش، مغربی بنگال، آندھرا پردیش، پنجاب، جموں و کشمیر اور مرکز کے زیر انتظام 2 علاقوں دادارا اور ناگر حویلی میں 79 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے، اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر نریندر مودی نے گجرات کے بڑودا حلقے سے انتخاب میں حصہ لیا، جبکہ اسی ریاست کے گاندھی نگر سے بی جے پی کے سابق صدر ایل کے اڈوانی امیدوار ہیں۔ اسی روز کانگریس کے صدر سونیا گاندھی اتر پردیش میں رائے بریلی، اور لکھنؤ سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر راج ناتھ سنگھ کی قسمت کا فیصلہ ای وی ایم مشینوں میں بند کر دیا گیا۔ اب صرف 2 مرحلوں یعنی 8ویں اور 9ویں مرحلے کے انتخابات ہونا باقی ہیں۔ 8ویں مرحلے کے لیے 7 مئی کو پولنگ ہوگی، جس میں پارلیمنٹ کی 64 نشستوں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا، جبکہ 9ویں اور آخری مرحلے میں 41 نشستوں کے لیے لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، جو 12 مئی کو ہوگا۔ ہندوستان کا الیکشن کمیشن 16 مئی کو انتخابات کے نتائج کا باضابطہ طور پر اعلان کرے گا۔ اس پورے انتخابی عمل کے دوران ہندوستان کے عوام لوک سبھا یا پارلیمنٹ کے لیے 543 نمائندوں کا چناؤ کریں گے، جس کو ہندوستان میں اقتدار کا سب سے طاقتور ادارہ تصور کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں 2 نشستیں اینگلو انڈین کمیونٹی کے لیے بھی مخصوص ہیں، جنہیں ہندوستان کا صدر نامزد کرتا ہے۔
جناب آپ نے ہمارے ساتھیوں کی تیار کردہ رپورٹ ملاحظہ فرمایا۔ جیسا کہ جانتے ہیں کل 7 مئی کو پارلیمانی انتخابات یا لوک سبھا الیکشن کا 8ویں مرحلہ انجام پائے گا، اور 60 سے زائد نشستوں کے لیے لوگ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے، اور اس میں جیسا کہ ہم نے اپنی ابتدائی گفتگو میں عرض کیا کہ کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی کی بھی قسمت کا فیصلہ ان کے قدیمی حلقے یعنی امیٹھی سے ہوگا۔ بہرحال اس دوران جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سیاسی تاپمان یا درجہ حرارت اپنے عروج کو پہنچ چکا ہے، اور ساری ہی پارٹیاں جی توڑ کوشش کریں کہ جیسے بھی ہو اب جتنی بھی سیٹیں بچی اس میں زیادہ سے زیادہ سیٹیں یا نشستیں حاصل کی جائیں۔ اگرچہ الیکٹرانک میڈیا کا رجحان دیکھنے میں یہ آئے کہ اس کی طرف سے بھارتی جنتا پارٹی کو زیادہ کوریج دی جا رہی ہے، اور ملک کے آئندہ وزیر اعظم کے طور پر بعض ٹی وی چینلوں نے تو نریندر مودی کو بھی پیش کرنا شروع کر دیا تھا، البتہ ابتدائی مراحل میں، لیکن جیسے جیسے انتخابی مراحل آگے بڑھتے گئے الیکٹرانک میڈیا کا رجحان بھی اس حوالے سے کہ انہی کو وزیر اعظم کے طور پر پیش کرے کم ہوتا چلا گیا۔ لیکن اس وقت مارکہ بہت ہی سخت ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب سہ فریقی مقابلہ ہو گیا ہے، ایک بھارتیہ جنتا پارٹی، دوسرے کانگریس، اور تیسرا فرنٹ، اور علاقائی جماعتوں کا بھی رول بہت ہی اہم ہو سکتا ہے آئندہ حکومت سازی کے مرحلے میں، اور بہت سے مبصرین اب یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ آنے والی پارلیمنٹ ہنگ پارلیمنٹ ہوگی۔ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہندوستان کے سینئر اور سرکردہ تجزیہ نگار وید پرتاپ ویدک صاحب۔ آداب سے جناب۔ جی شکریہ ویدک صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ 7 مرحلے کی پولنگ مکمل ہو چکی ہے، اب تک آپ کو کیسا نظر آیا انتخابی عمل؟
جی مجھ کو اچھا تو یہ لگا کہ دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک اور اس کا یہ سب سے بڑا انتخاب بہت ہی امن پسند طریقے سے بالکل آخری دور میں پہنچ گیا ہے، کوئی زیادہ تشدد نہیں ہوئی۔ لیکن افسوس ایک بات کا ہے کہ ہمارے رہنما لوگ آپس میں بہت ہی تنگ مزاج ہیں، اور کچھ ایسے لفظوں کا استعمال کر رہے ہیں کہ جو ٹھیک نہیں لگتا، جو درست نہیں لگتا۔ اس کے علاوہ انتخاب بہت اچھے ڈھنگ سے ہو گئے ہیں، اور امید ہے کہ بہت صاف نتائج آئیں گے، نتائج گڑبڑ نہیں ہونے والے ہیں، نتائج صاف صاف دکھائی پڑ رہے ہیں۔
جی وید پرتاپ ویدک صاحب، آپ نے ابھی کچھ رہنماؤں کے بیانات کا ذکر کیا، آپ دیکھیں کہ انتخابات کے دوران شمال مشرق ریاست آسام کے کھوکھرا جار، چیرانگ اور بکسا جیسے ضلعوں میں جو بوڈو قبائلیوں کا علاقہ ہے، وہاں پر مسلمانوں پر حملہ کیا گیا، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 34 مسلمان مارے جا چکے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ بعض رہنماؤں کی اشتعال انگیز بھڑکاؤ تقریروں کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے, اور بعض جماعتیں تو بعض پارٹیاں تو بی جے پی کے وزیر اعظم کے عہدے کے امیدوار نریندر مودی کی اس تقریر کا بھی حوالہ دے رہے ہیں جو انہوں نے آسام میں جا کر کیا کہ ہم وزیر اعظم بن گئے تو بنگالیوں کو یہاں سے نکال باہر کریں گے, اور اس کے بعد ہی یہ حملہ ہوا. کتنا دوش مان رہے ہیں, کتنا ذمہ دار مان رہے ہیں ان کے اس بیان کو مسلمانوں کے قتل عام میں جو آسام میں ہوا ہے؟
بی جے پی کی سرکار نہیں ہے, وہاں نریندر مودی کی سرکار نہیں ہے, وہاں سرکار ہے کانگریس پارٹی کی. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کانگریس پارٹی کے لوگوں نے وہاں بودو لوگوں کو بھڑکایا ہے بنگلہ دیشیوں کے خلاف. معاملہ یہ ہندو اور مسلمان کا اتنا نہیں ہے جتنا اندرونی اور باہری لوگوں کا ہے. جو بنگلہ دیش سے لوگ آئے ہیں وہ مسلمان ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ان کی مخالفت اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ غیر ملک کے لوگ ہیں, ان کے آنے سے لوگوں کی نوکریاں چھن گئی ہیں, جو لوگ بالکل وہیں کے رہنے والے ہیں ان کو نقصان ہو رہے ہیں, اور وہ مل جل کر ان کو ڈراتے بھی ہیں جو باہری لوگ ہیں, کیونکہ ان کے تعلقات اپنے ملک سے بھی ہیں اور ہندوستان میں بھی انہوں نے جڑیں بنا لی ہیں.
آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ مارے گئے ہیں وہ ہندوستانی نہیں تھے, وہ ہندوستانی شہری نہیں تھے؟
وہ ان میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کی عمر بڑی ہے اور جو بھارت میں پیدا نہیں ہوئے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو ہندوستان کے سٹیزن بن گئے ہیں, ان کو ناگرکتا مل گئی ہے. اور آپ نے یہ ٹھیک کہا کہ مودی نے کئی جگہ اپنی تقریروں میں کہا ہے کہ باہری ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں نے زمینوں پہ قبضہ کر لیا ہے, نوکریوں پر اور کام دھام پہ قبضہ کر لیا ہے. اس سے جو لوگ پہلے سے رہ رہے ہیں اس ملک میں ان کو وہ مزاج دلائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ انتخاب کے دوران اس طرح کی باتیں ووٹ کباڑنے کے لیے کہی جاتی ہیں, لیکن یہ بالکل ناممکن ہے کہ ہندوستان جیسے ایک وسیع ملک میں ہمارے چھوٹے موٹے پڑوسی دیشوں کے لوگ اگر آتے ہیں تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے, کیونکہ ہم سب ایک فیملی ہیں, ہم سب لوگ ایک کٹمب ہے, ایک قبیلہ ہے, ایک پریوار ہے. پڑوسی ملک سب ہمارے بھائی بند ہیں, وہاں جانا اور آنا لگا رہتا ہے, اور یہ آج کا معاملہ نہیں ہے, یہ ہزاروں سال سے چل رہا ہے. اس لیے یہ ہے کہ اس پر تھوڑا سا پرتیبندھ ہونا چاہیے, تھوڑی سی اس پہ سختی.
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. بات جی ہاں, میں آپ بات کا سلسلہ جاری رکھوں گا, آپ ٹیلی فون لائن پر موجود رہیے گا. چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں ہندوستان کے سینئر اور سرکردہ صحافی ظفر آغا صاحب. السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام.
ظفر آغا صاحب, ابھی الیکشن کے تناظر میں بات ہو رہی تھی لیکن بات چلی گئی آسام کی طرف, البتہ وہ بھی ہمارا موضوع گفتگو ہے آج کے اس پروگرام میں. وید پرتاپ ویدک صاحب سے میں نے سوال کیا, انہوں نے کہا کہ بعض رہنماؤں کے بیانات لوک سبھا انتخابات کی مہم کے دوران بہت ہی ناشائستہ تھے, تو انہی کے سوال اور انہی کے بیان کے تناظر میں نے سوال کیا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو آسام میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا اس میں نریندر مودی کا بھی ایک خطاب تھا جس کو ذمہ دار مان رہی ہیں بعض سیاسی جماعت ہندوستان کی, کہ ان کے اس اشتعال انگیز مبینہ طور پر بیان کے بعد ہی وہاں پر مسلمانوں کا قتل عام ہوا. تو وید پرتاپ ویدا صاحب کا کہنا ہے کہ یہ غیر ملکی لوگ تھے جو مارے گئے. اول یہ کہ کسی کا بھی خون بہانا چاہے وہ غیر ملکی ہو یا ملکی ہو جائز اور اچھا عمل نہیں ہے. دوسرے, کیا یہ صحیح بات ہے کہ وہ غیر ملکی لوگ تھے؟
دیکھیے, میرے پاس کوئی بڑا پیمانہ نہیں ہے اور ایسا کوئی میٹر نہیں ہے جس سے میں یہ بتا سکوں کہ وہ جو لوگ مارے گئے وہ غیر ملکی ہی تھے یا نہیں تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آسام میں جو لوگ آتے ہیں ان بنگلہ دیش سے وہاں انفلکس رہتا ہے, یہ ایک مسئلہ ہے آسام کا. لیکن جیسا آپ نے کہا کہ कि इलेक्शन के दौरान इस किस्म के बयानात किसी एक ऐसे लीडर के लिए जो हिंदुस्तान की बहुत अहम पार्टी की जानिब से मुल्क का अगले वज़ीर आज़म का दावेदार हो, उसकी तरफ से ऐसे बयान आना कि हम उनको बाहर कर देंगे जो बाहर से आए हैं, या बंगाल में ख़ुद हिंदुस्तान का जो बंगाल का में कैंपेन करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि जो अष्टमी नहीं मनाते हैं, दुर्गा पूजा नहीं मनाते हैं, हम उनको बाहर भेज देंगे। अष्टमी नहीं मनाने वालों में तो बहुत से खुद बंगाल के मुसलमान भी हैं। तो इस किस्म के बयानात ने यकीनन हालात बिगाड़े हैं, माहौल में हर किस्म का तनाज़े और तजाद पैदा किया है। और वो तो जाने दीजिए आसाम की बात, वहाँ चुनाव हो चुका है। इस वक्त उत्तर प्रदेश और बिहार, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश पे सारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की निगाहें लगी हुई हैं, और वहाँ कल आपको मालूम है कि बहुत अहम फेज़ में चुनाव होने वाला है। फिर उसके बाद आखिरी पड़ाव में चुनाव के खुद नरेंद्र मोदी जी का बनारस से चुनाव होना है। वहाँ पर भी उनकी जानिब से और ख़ास तौर से उनकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अमित शाह की तरफ से बड़े ऐसे बयान आ रहे हैं जिनके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बहुत सख्त एतराज़ किए हैं। और चाहे वो आसाम का मामला रहा हो, बंगाल में जिस किस्म के बयानात हुए, या जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल चुनाव शुरू होने से पहले ही राहुल गांधी को शहज़ादा महारानी सोनिया गांधी के बारे में इस किस्म की ज़ुबान का इस्तेमाल करके, और अब जो जिस तरह से शिद्दत इन बयानात में पैदा होती चली जा रही है, वो एक बड़ी समझना ये चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी की जानिब से बड़ी एक सोची समझी स्ट्रैटेजी और हिकमत अमली का हिस्सा है। मोदी जी की सियासत हमेशा उसी वक्त कामयाब होती है जब वो एक डिविजिव पॉलिटिक्स करने में कामयाब हो जाते हैं। आपने देखा कि गुजरात के चुनाव, जो पहली बार उन्होंने चुनाव जीते या दूसरी बार भी जो चुनाव जीते, उसमें डिविजिव पॉलिटिक्स का बहुत अहम रोल था। अब फिर वो बहुत सोच समझ के, बहुत कैलकुलेटेड तरीके से संघ परिवार की तरफ से और मोदी जी की तरफ से एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि जिसमें पैशन और जज्बात भड़के और एक हिंदू वोट बैंक कंसोलिडेशन हो, ताकि जो कास्ट की पॉलिटिक्स है यूपी और बिहार में, ख़ास तौर से जो कास्ट की पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स को मेल को लगाम लगाई जा सके और पैशन के ऊपर, जज्बात के बुनियाद के ऊपर वहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार में और दूसरे भी कुछ इलाकों में जहाँ जहाँ इस किस्म के से वो फ़ायदा उठा सकते हों, उस तो वो उनको उसका फ़ायदा उठाकर अपनी नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाया जाए। तो ये बहुत सोची समझी, बहुत कैलकुलेटेड गेम प्लान जिसको कहा जाता है,
स्ट्रैटेजी है,
जिसके तहत मोदी जी और उनके दूसरे लेफ्टिनेंट और उनकी पार्टी काम कर रही है। और उसमें किस हद तक कामयाबी होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उनकी पूरी कोशिश ये है कि एक हिंदू वोट बैंक बनाया जाए, ताकि दूसरे जो वोट बैंक्स हैं, मुस्लिम वोट बैंक या कास्ट वोट बैंक जो है, उसमें दरार लगाई जा सके।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर होंगे सफर आगा साहब आपकी खिदमत में।
कामयाबी हासिल हो, इस वजह से आप देख रहे हैं कि चुनाव बहुत हिंदुस्तान का बड़ा डिविजिव होता चला जा रहा है और आगे शायद और डिविजिव हो जाए।
जी, मैं फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। चलते हैं लंदन स्टूडियो जहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर शौज़ा भैदर साहब, जिनकी नज़रें हैं हिंदुस्तान के इंतखाबी अमल पर और सियासी सूझबूझ काफ़ी रखते हैं इस ताल्लुक से। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम।
जी शौज़ा साहब, वहाँ बरतानिया में बैठ के कैसा लग रहा है हिंदुस्तान की लोकसभा इंतखाबात का माहौल, और आप लोग क्या सोचते हैं कि सूरत हाल किस रुख की तरफ जा रही है?
देखिए, जो भी खबरें आ रही हैं इस वक्त हिंदुस्तान से, वो तो सारी हम लोग के पास वही एग्जिट पोल्स की हैं, जो मीडिया दिखाता है उसकी हैं, जो बयानात दे रहे हैं सारे कैंडिडेट्स, वो सारी रिपोर्ट्स आती हैं हम लोग के पास। तो उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि इस वक्त बीजेपी है आगे, और लेकिन जैसे आगा साहब ने बोला कि अब तो रिजल्ट्स बताएंगे, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके साथ जो काम कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा खौफ का माहौल पैदा कर दिया है कि बहुत सारे लोग खौफ में ये नहीं बता रहे हैं कि किस तरफ उनका रुझान है। तो एक बहुत बड़ा ऐसी, आज आज मैंने सुबह एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें एक बहुत अच्छा एक उसमें डिस्क्रिप्शन था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि वो किस तरफ वोट देंगे। तो लगता तो है कि वो बीजेपी की तरफ हैं, लेकिन हो सकता है वो बीजेपी को ना सपोर्ट करें। तो ये बस 16 मई को ही पता चलेगा कि क्या होगा।
जी वैद्य प्रताप, वैद्य साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, फिर आता हूँ उन्हीं बयान की तरफ जो मुख्तलिफ जमातों पार्टियों के रहनुमाओं की तरफ से दिए
आवाज
जा रहे
सुनाई नहीं
हैं।
पड़ रही है। हेलो,
जी वैद्य प्रताप, वैद्य साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? जी वैद्य साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं?
हाँ
जी मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी
जी
जफर आगा साहब ने एक मोदी साहब के बयान की तरफ इशारा किया और उनके बयान की तरफ के वो शख्सियात पर मसलन तंज कर रहे हैं राहुल और सोनिया को, या इसी तरीके से बंगाल में जाके कह रहे हैं कि जो दुर्गा पूजा अमित शिरकत नहीं करेगा उसको हिंदुस्तान छोड़ना होगा। तो इस तरह के बयान क्या आप समझते हैं कि समाज को जोड़ेंगे या समाज को तोड़ेंगे?
हेलो, आवाज कट रही है। हेलो,
जी वैदक साहब, हेलो
कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
जी वैदक साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? जी हमारे साथ ही कोशिश करेंगे इनसे दोबारा रबता बरकरार किया जाए। ज़फ़र आगा साहब की खिदमत में दोबारा चलते हैं, दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। ज़फ़र आगा साहब, आप देखें कि नरेंद्र मोदी के बयान तो अपनी जगह, लेकिन मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे बयान आ रहे हैं जो इश्तियाल अंगेज़ है। मसलन कांग्रेस पार्टी के दो एक लीडरों ने कहा कि अगर मोदी यहाँ आ जाए तो हम उनको जो है वो जिंदा ज़मीन में दफन कर देंगे, गाड़ देंगे। या मसलन अगर किसी ने जो है वो फला पार्टी को वोट नहीं दिया मुसलमान ने तो उसको अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। तो बजाय ये कि पार्टियां आएं अपने मंशूर बयान करें, मुल्क की तरक्की और पेशरफ के लिए कोई जामे मंसूबा पेश करें, इस तरह के बयान क्या इससे पहले भी इंतखाबात में दिए जाते रहे या इस बार कोई ख़ास बात है जो इस तरह के बयान मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से आ रहे हैं?
आपने बजा फरमाया, मुझको सन 77 से 1977 से इस बात का अंदाज़ा है और मैं उस तब से हिंदुस्तान के चुनाव में दिलचस्पी ले रहा हूँ, देख रहा हूँ, वोट डाल रहा हूँ और सहाफ़ी होने के बाद से उनको कवर भी करता रहा हूँ। मेरी मेरी याददाश्त में कोई ऐसा हिंदुस्तान का पार्लियामानी चुनाव नहीं हुआ है जिसमें इस किस्म की ओछी ज़ुबान का इस्तेमाल हुआ हो, इस किस्म के ओछे बयान किए गए हों। खुद नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स से, अब उनकी वो डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स कहाँ गई ये नहीं मालूम। उसका नतीजा ये हुआ कि दूसरी पार्टियाँ जो थीं उन्होंने भी उनको उसी जवाब उन्हीं उसी ज़बान में जवाब देना शुरू किया। इससे हुआ ये कि हिंदुस्तान की जमहूरी कदरों को एक को ठेस पहुँची है। दूसरी जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे और बल्कि आपने बहुत खुल के ये बात कही और बड़े मौजू बात कही कि इलेक्शन इस बात के लिए होते हैं, इलेक्शन कैंपेन इस बात के लिए होते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और उसकी नुमाइंदगी करने वाले मुख्तलिफ हलकों में जो उनके नुमाइंदे हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं वो अपनी पार्टी के प्रोग्राम आवाम को पहुँचाएँ। वो क्या तरक्की लाना, क्या क्या तरक्की के लिए आवाम की और मुल्क की तरक्की के लिए क्या काम करना चाहते हैं इस प्रोग्राम को पेश करें, न कि ज़ातियात के ऊपर हमले हों। ये किसी को महारानी कहा जाए और किसी को शहजादा कहा जाए या किसी को के ऊपर तरह तरह की टांग की जाए या दूसरी पार्टियां उसके जवाब में इस किस्म की बातें करें, ये जो सबसे बड़ी ट्रेजडी है इस इलेक्शन की वो यही है कि कहीं प्रोग्राम पॉलिसीज़ और इनके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा, तकरीरें नहीं हो रही, कैंपेन नहीं हो रही, इसके बजाय ज़ातियात पर, पर्सनालिटीज़ के ऊपर और ओछी ज़ातियात और ऊपर और बयानबाजियाँ हो रही हैं जिससे मुल्क की जमहूरी कदरों को यकीनन बहुत बहुत ज़बरदस्त धक्का लगा है। और मैं समझता हूँ कि आगे चलकर हिंदुस्तान की जमहूरियत को इससे ख़तरा पैदा हो सकता है। इसलिए सियासी पार्टियाँ तो वोट बटोरने के गेम में कि वन अपमैनशिप में इन्वॉल्व है, मैं समझता हूँ कि सिविल हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी को इस सिलसिले में कोई कदम पेशरफ्त करनी चाहिए, कोई एक ऐसा प्रोग्राम पेश करना चाहिए कि जिसमें ये जिस तरह का माहौल चुनाव में बना है, आइंदा के चुनाव में कम से कम इस किस्म की गलतियां नहीं होने पाए। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, सारे मुल्क दुनिया की निगाहें इसके चुनाव पर लगी होती हैं। अगर हम अपने स्टैंडर्ड्स और गिरा देंगे और जमहूरी कदरों को इस ओछी प्लेटफॉर्म हद तक ले आएंगे, तो मैं समझता हूँ कि उससे हिंदुस्तान की जमहूरियत ही नहीं दुनिया में जमहूरियत को नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए ये जो हालिया चुनाव में जिस किस्म की जो स्टैंडर्ड गिरे हुए स्टैंडर्ड नज़र आ रहे हैं, उनके ऊपर फौरन रोक लगनी चाहिए और इस सिलसिले में सिविल हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी को कोई पेशरफ्त और पहलकदमी करनी चाहिए।
बहुत शुक्रिया आपका,
मेरी अपनी ज़ाती राय।
बहुत शुक्रिया आपका। वैद्य प्रताप वैद्य साहब, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं?
जी।
अभी जफर आगा साहब ने भी इशारा किया और आपने भी अपने गुफ्तगू में इशारा किया कि बयानात बहुत ही ओछी हद तक, बहुत ही निचली सतह का तक पहुंच गए हैं रहनुमाओं के, और कहा यह जा रहा है कि इसकी शुरुआत, अलबत्ता जैसा कि जफर आगा साहब ने कहा और भी लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से किया गया, और उसके जवाब में भी जिन लोगों ने उनका जवाब दिया वो भी जाहिर है कि नामाकूल बयान था और इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। आपने कहा कि जो लोग आसाम में मारे गए वो गैर मुल्की थे, बांग्लादेशी थे, तो क्या सिर्फ मुसलमान ही बांग्लादेश से आए हैं, या जो नरेंद्र मोदी साहब ने मगरबी बंगाल में अपना एक बयान दिया और जिस पर वहाँ की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सख्त बरहम हुई हैं और सख्त नाराज़गी का इजहार किया है और कहा है कि यहाँ कलकत्ता या मगरबी बंगाल में भी जो बंगाली हम उनको निकाल बाहर करेंगे, या जो लोग दुर्गा पूजा में शिरकत नहीं करते उनको मुल्क से जाना होगा, इस तरह के बयानात क्या आप समझते हैं समाज को जोड़ेंगे या तोड़ेंगे?
नहीं नहीं, इस तरह के बयान देना बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई दुर्गा पूजा न करे या नमाज न पढ़े या चर्च न जाए उसको हिंदुस्तान से निकाल बाहर करेंगे, ये बात कहना तो बेहद बड़ा जुल्म है मेरी राय में, बहुत ही गलत बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहां तक मुझे जानकारी है नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है, लेकिन ममता बनर्जी अगर नाराज है तो इसलिए नाराज है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी के किसी लीडर की सदारत में कोई तकरीर हो और वहाँ हजारों लोग, यानी 80,000 लोग, 90,000 लोग, 1,00,000 लोग इकट्ठा हो जाए। इतना तो सिर्फ इंदिरा गांधी के लिए लोग इकट्ठा होते थे, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सभा में तो 2,000-4,000 लोग भी नहीं आते हैं। लेकिन मोदी की मीटिंग्स में जो जबरदस्त वहाँ हाजिरी होती है उसने सारे रीजनल लीडर्स के पसीने छुड़ा दिए हैं। इसलिए और ममता बनर्जी तो कई बातें बिल्कुल बेलगाम बोलने के लिए बहुत ही मशहूर हो चुकी हैं। वो जब यहाँ हमारे पार्लियामेंट में थी, पार्लियामेंट की मेंबर थी, तो इतना ज्यादा चीखती चिल्लाती थी कि लोग उनकी मिसाल देते थे। अगर कोई गुस्से में चीखने लगे तो बोलते थे देखिए ममता बनर्जी की तरह चिल्ला रहा है ये। तो ममता बनर्जी अगर कुछ अटैक कर रही हैं तो मैं उसको खास तवज्जो देने लायक नहीं समझता हूँ। उनकी घबराहट ये है कि जो मार्क्सवादी पार्टी थी, मार्क्सिस्ट पार्टी, अब वो उतनी मजबूत नहीं रही है। हालांकि ये बात पक्की है कि बीजेपी को वहां से कोई ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है बंगाल से, लेकिन जहां तक दौर है चुनावी प्रचार का, उसमें ममता बनर्जी को, जयललिता को, मायावती को, इन सब लेडीज को हिलाकर रख दिया है
जी।
ये सब घबरा गई हैं।
अच्छा वैदिक साहब, और वैदिक साहब, वैदिक साहब मोदी के करीबी साथी,
बात ये हो रही है
जी, वैदिक साहब मोदी के करीबी साथी जो प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं यूपी में इलेक्शन के, अमित शाह, उन्होंने पूरे एक जिले को, 50 लाख की आबादी के जिले को, यानी आजमगढ़ को दहशतगर्दी का मरकज बना दिया। इसको आप कैसा लेते हैं?
नहीं नहीं, मैं इस बात को ठीक नहीं समझता हूँ। किसी इलाके के सारे लोग गलत काम करते हो या सब अच्छे काम करते हो, ऐसा होता नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब आदमी चुनाव प्रचार में लगता है और लंबी चौड़ी बातें करता है और दिन में 8-8, 10-10 सभाएं करता है, तो उसको ये ध्यान नहीं रहता है कि क्या बात कितनी मिकदार में बोलनी चाहिए। इसलिए वो लोग जरूरत से ज्यादा रंग पोत देते हैं। तो उस मायने में अमित शाह की ये गलती है कि उन्होंने पूरे आजमगढ़ को कह दिया कि वो दहशतगर्दी का अड्डा है ये। लेकिन इस बात को लेके बहुत तूल देना जरूरी नहीं है। आजमगढ़ में बदनामी बहुत हुई थी, बहुत से टेररिस्ट वहां पकड़े गए थे और उनके मददगार भी वहां पकड़े गए थे, इसमें तो कोई शक है नहीं। लेकिन उसको अड्डा कह देना दहशतगर्दी का मेरी राय में ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है वो।
जी बहुत शुक्रिया, आप टेलीफोन लाइन पर रहिएगा, मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में। नाज़रीन, हमारे मेहमानों से हमारी गुफ्तगू जारी है, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, फिर आपकी खिदमत में और अपने मेहमानों की खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं, चलते हैं लंदन स्टूडियो, डॉक्टर शहजाब हैदर साहब। जी शहजाब साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ अमरीकी अखबारात ने तो अपने ख्यालात और अपनी कयास आरायाँ शुरू कर दी हैं, बरतानवी अखबारात क्या लिखते हैं इलेक्शन के ताल्लुक से कि किसकी हुकूमत बनेगी, कौन सी पार्टी ज़्यादा मेजार्टी या ज़्यादा सीटें हासिल कर सकेगी?
अभी तो ऐसा कुछ खुल के ब्रितानिया नहीं आ रहे हैं सामने, लेकिन धीरे धीरे करके इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, बीबीसी भी अलग अलग कवरेज ले रहे हैं इनकी, इलेक्शन की हो रही है। सबका मानना यही है कि इस वक्त सारा रुझान जो है वो बीजेपी की जीत पे है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ भी हो सकता है। अभी बहुत ही एक जैसे 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 अमित शाह और लोग जो बयानात कर रहे हैं, उससे भी अभी एक बहुत बड़ा तबका रह गया है जो वोट करने से बाकी है, और किस तरफ वो वोट करेगा वो 16 ही को पता चलेगा।
जी शहजाद हैदर साहब, एक जमात जो अभी हालिया दिनों में या महीनों में खुलकर सामने आई है वो आम आदमी पार्टी थी, जिसने चंद दिनों के लिए या चंद हफ्तों के लिए दिल्ली में रियासती हुकूमत भी बनाई थी केजरीवाल की सदारत और क़यादत में, उसका आप रोल इस इलेक्शन में कैसा देख रहे हैं?
देखिए, ये तो सबको मालूम ही है कि कांग्रेस से सबकी मायूसी थी। इतने ज़्यादा स्कैम्स हुए हैं उसको, फिर क्या नाम है, कुछ भी उसके ऊपर कोई भी ये लोग वो नहीं करते हैं, क्या नाम है, आपका एक्शन नहीं लेते हैं, तो एक एक ऑल्टरनेटिव नहीं था। और रीजनल पार्टीज थी, अब जैसे बंगाल में है, तमिलनाडु में, वो एक नेशनल लेवल पे कोई भी एक सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकती। आम आदमी पार्टी एक वाहिद ऐसी पार्टी निकल के आई है और बहुत ही हाल में आई है। मुझे लगता है इससे और रीजनल पार्टीज को सीखना चाहिए कि वो क्या सही कर रही है, और उनको नेशनल लेवल पे आना चाहिए, ना कि सिर्फ रीजनल लेवल पे रहने के लिए। तो आम आदमी पार्टी, मेरे हिसाब से, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड किया है कांग्रेस या बीजेपी के खिलाफ।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा। जफर आगा साहब, कहा यह जाता है कि पहले दूसरे और तीसरे मरहले की पोलिंग तक तो आम वोटर कुछ कन्फ्यूजन का शिकार था और एक तरह से लहर थी एक ख़ास जमात भारतीय जनता पार्टी की तरफ, लेकिन ऐसा लगता है कि चौथे पाँचवें और छठे के बाद सूरत हाल तब्दील हो रही है और वो रुझान के बीजेपी या एनडीए को वाज़े मेजॉरिटी मिल जाएगी। अब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी जो प्रचार कर रहा था, शायद उसके भी एक गुमान और तस्वुरात कुछ गलत साबित रहे उसके अपने जो में, अब उसने भी ये सारी बातें कहना छोड़ दी, तो क्या ये सही है कि सूरत हाल अब कुछ तब्दील हो रही है और दूसरी पार्टियों के भी हक़ में अब बदल रही है सूरत हाल?
देखिए, मैं खुद एक साफी हूँ, लेकिन मुझे पहले दिन से ये नहीं दिखाई दे रहा था कि जैसे कोई कोई बहुत बड़ी वेव की, कोई बहुत बड़ी सुनामी हो। जैसा हम सहाफ़ी आपस में जब बात करते थे तो ये कहते थे कि ये जो वेव और जो सुनामी है वो टीवी स्टूडियोज़ में ज़्यादा है और ज़मीन पर उसकी ये सूरत हाल नहीं है। मोदी फैक्टर के बारे में नहीं, से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ जो वेव का सिलसिला था, 300 सीटें एनडीए को दी जा रही थीं टेलीविज़न चैनल्स पर, उसके बारे में संजीदा किस्म के सहाफ़ियों और सियासी हलकों और सिविल सोसाइटी तीनों गिरोहों में बहुत डाउट था। और आप जैसा कह रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे लोगों को ये नज़र आना शुरू हुआ कि रीजनल पार्टीज़ हैं, कांग्रेस ज़रूर कमज़ोर हुई है, लेकिन कांग्रेस के बारे में भी जैसा पहले अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि बिल्कुल कोलैप्स हो गई, ये सूरत हाल नहीं है। अब लोग यहाँ तक कह रहे हैं, कुछ सर्वेज ये भी कह रहे हैं कि 130, 140, 145 सीटें कांग्रेस को भी मिल सकती हैं। फिर रीजनल पार्टीज़ में ने बहुत जम कर एनडीए का मुकाबला किया है, ख़ास तौर से बिहार से जो खबरें आई हैं। बिहार में ये कहा जा रहा है कि अगर दूसरी जगहों के ऊपर नरेंद्र मोदी की वेव का जिक्र हो रहा है, तो बिहार में कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की वेव है, और वहाँ पे उनको उनके अभी हाल तक खुद लालू प्रसाद यादव के जो हामी थे रामविलास पासवान साहब, वो छोड़कर अब उन्होंने नरेंद्र मोदी का और एनडीए का साथ हाथ पकड़ लिया है। वहाँ से ये खबरें आ रही हैं, उनका चुनाव शायद कल होना है, कि खुद रामविलास पासवान की सीट खतरे में दिखाई दे रही है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बिहार से जो खबरें मिली हैं वो रिवर्स वेव यानी मोदी की मुखालिफत की वेव मिली है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की जो बड़ी रीजनल पार्टीज़ हैं, मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी, ये बहुत ज़बरदस्त मुकाबला कर रही है भारतीय जनता पार्टी का, बहुत सख्त। और जहाँ जहाँ पे कांग्रेस की सूरत हाल यूपी में बेहतर है, वहाँ कांग्रेस के भी कैंडिडेट्स अच्छी अच्छी कंटेस्ट दे रहे हैं। हद ये है कि लखनऊ में, जहाँ से खुद भारतीय जनता पार्टी के पिछले मरहले में भारतीय जनता पार्टी के सदर राजनाथ जी चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ पर कांग्रेस की कैंडिडेट रीता भावना ने उनको कहा, यह जाता है कि बहुत टफ फाइट दी है। रिजल्ट क्या होंगे इसके तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन रीता भावना बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ी है लखनऊ में। इसी तरह ममता बनर्जी बंगाल में, जम जयललिता और करुणानिधि बंगाल में, सॉरी तमिलनाडु में, आंध्रा की अपनी रीजनल पार्टीज़ हैं जो नई आंध्रा सीमांध्रा और तेलंगाना में जगन की पार्टी है, उधर टीआरएस पार्टी है। ये जो इलाकाई पार्टियां हैं, इन्होंने इस कांग्रेस पार्टी के कोलैप्स से जो वैक्यूम बना था, उस वैक्यूम को बहुत हद तक फिल करने की कोशिश की है, और उसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी नज़र आ रही हैं। जिसका सबब यह है कि ये नहीं लगता कि जो सूरत हाल शुरू में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ख़ासतौर से जैसा आप कह रहे थे बता रहा था कि एक स्वीप है, 300 सीटें 400 सीटें वो उनको मिल रही हैं। और एक दूसरी बात जो लोग उमूमन पॉलिटिकल एनालिस्ट जिसका जिक्र नहीं करते, ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो जिसका स्प्रेड जिसका फैलाव जिसका स्प्रेड महदूद है, यानी नॉर्थ इंडिया हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स और वेस्टर्न इंडिया यानी महाराष्ट्र और गुजरात और थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया यानी मध्य प्रदेश, इसके अलावा मशरक़ी हिंदुस्तान हो, जनूबी हिंदुस्तान सदर्न इंडिया हो, नॉर्थ ईस्ट हो, ये वो इलाके हैं जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी नमक के बराबर है या बिल्कुल नहीं है। तो इस सूरत हाल में अगर 300 325 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ रही है, उनके कैंडिडेट तो सब जगह हैं, लेकिन सीरियस कंटेस्ट अगर 300 325 सीटों पे है, तो उसमें वो कितनी सीटों के ऊपर कामयाब होंगे, ये फैक्टर्स भी हमको अपनी एनालिसिस में शामिल करना ज़रूरी है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो प्रोजेक्शंस थे, 300 सीट 272 प्लस की जो बात थी, वो कयास ज़्यादा लगता है और हकीकत से थोड़ा परे नज़र आता है। मैं ये कहूँगा कि इस चुनाव में रीजनल पार्ट लड़ाई जो थी वो ट्रायंगुलर हो गई, एक पोल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का है, दूसरा यूपीए का है, और तीसरी तरफ रीजनल पार्टीज हैं जो जिनका परफॉर्मेंस अब
बहुत
ये समझ में
शुक्रिया,
आने लगा है लोगों
बहुत
को
शुक्रिया
और
जफर
मीडिया
साहब
को भी, कि काफ़ी अहम है, और इलेक्शन के बाद ये रीजनल पार्टीज़ बहुत अहम रोल अदा कर सकती हैं।
बहुत शुक्रिया वैद्य प्रताप। वैदक साहब, 3 रोज़ कबल की बात है गालिबन, मैं खुद एक इंटरव्यू सुन रहा था नरेंद्र मोदी जी का, जिसमें खुद एंकर ने उनसे पूछा, सवाल करने वाले साफ़ी ने उनसे पूछा साफ कि आम तौर पर मुसलमानों के बारे में कहा जा रहा है कि वो आपसे डरते हैं, तो आप उनका खौफ दूर क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वो जवाब नहीं दे सके। उन्होंने मुसलमानों का खौफ दूर करने के लिए क्यों कोई अमली इकदाम नहीं किया, क्यों वाज़े तौर पर कोई बयान नहीं दिया और क्यों इस तरफ नहीं आए, अगरचे वो मुसलमानों से भी वोट मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के लिए ये करेंगे और मदरसों के लिए ये करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन जब ये सवाल उनसे कहा जाता है, पूछा जाता है, तो उसका कोई जवाब क्यों नहीं देते वो?
देखिए, मोदी चाहे लाख कोशिश करें, उनको मुसलमान किसी हालत में वोट नहीं देने वाले हैं। इस चुनाव में तो जो मुसलमान लोग हैं वो मोदी को 1% भी वोट नहीं देंगे। मोदी इस बात को जानते हैं। अगर मोदी मुसलमानों को खुश करने के लिए, अभी तो खास कुछ कर नहीं सकते, वजीर आजम तो बने नहीं है, मामूली एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वजीर आला हैं गुजरात के, क्या कर सकते हैं? सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ बयानबाजी कर सकते हैं कि दिल के खुश करने को ख्याल अच्छा है, कोई ख्याल जाहिर कर सकते हैं, लेकिन उससे मुसलमानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। मोदी को वोट का बहुत नुकसान हो जाएगा। मोदी को जो गैर मुसलमानों के वोट मिलने वाले हैं, ईसाइयों के, सिखों के, हिंदुओं के, उस वोट में इजाफा नहीं होगा, उस वोट में उनको नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मुसलमानों को खुश करने के लिए कोई जबरदस्त बात वो बोल नहीं रहे हैं। हालांकि दूसरी पार्टियां मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कर रही हैं और दूसरी रियायतें देने की बात कर रही हैं, और उससे उनका वोट थोड़ा बढ़ेगा, मुसलमान उनको तरजीह देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी आज कुछ भी कह दे मुसलमानों के लिए तो भी मुसलमान उस पर एतबार नहीं करेंगे। ये हालत है। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि जैसे अभी मैं सुन रहा था, एक साहब कह रहे थे कि मोदी को शायद मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, हो सकता है कि ना मिले, लेकिन मैं सन 52 से सारे चुनावों को देखता रहा हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि हिंदुस्तान में कभी भी 71 में जब इंदिरा गांधी को 352 सीटें मिली थी और राजीव गांधी को 410 सीटें मिली थी 1984 में, तब भी इतना पागलपन, इतनी मदहोशी, इतना जोश मैंने हिंदुस्तान में कभी नहीं देखा कि मोदी खड़े होके खुद बोलता है कि सुनो सुनो भाई, भीड़ वालों को बोलता है और भीड़ बोलती है मोदी मोदी मोदी, फिर मोदी बोलता है चुप हो जाओ तो लोग बोलते हैं मोदी मोदी मोदी। तो ये पागलपन, और ये पागलपन सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही नहीं है कि जहाँ बीजेपी की जड़ें थोड़ी मजबूत है, वो आसाम जाए तो, केरल जाए तो, बंगाल जाए तो, पंजाब जाए तो, हरियाणा जाए तो, कहीं हिंदुस्तान के किसी भी सूबे में चला जाए, वो सारे लोग इसी तरह से पगलाए हुए हैं। तो जब लोगों का ये मैं देखता हूँ पागलपन, तो मुझे लगता है कि मोदी को शायद क्लियर मेजॉरिटी सिर्फ मोदी को मिल जाए, मोदी की पार्टी को मिल जाए, मेरे कहने का मतलब ये है। और कांग्रेस की जितनी दुर्दशा है, कितनी हालत खराब है, इसका आप तस्वीर ही नहीं कर सकते।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। वक्त हमारा खत्म हुआ चाहता है। वैद्य प्रताप वैदक साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं, और शौजा वैदक साहब आपसे मदद की आपसे अगला सवाल ना कर सके, और हम शुक्रगुजार हैं जफर आगा साहब के। नाज़रीन, आपने हमारे तीनों मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। बहरहाल, कुछ का यह कहना है कि मोदी की वेव है, कुछ का कहना है कि नहीं है, कुछ का यह कहना है कि ज़मीनी हकायक कुछ और हैं, लेकिन सब कुछ तो 16 मई को ही पता चलेगा। लेकिन हकीकत यह है कि हिंदुस्तान का वोटर बहुत ही होशियार, बहुत ही बेदार और बहुत ही चालाक है, और ख़ास तौर पर वहाँ जो इलाकाई जमातें और पार्टियाँ हैं उनका भी अपना असर व रसूख है। तो हमेशा हिंदुस्तान के इलेक्शन में नतायज चौंका देने वाले होते हैं, जैसा 2004 और 2009 में भी आपने देखा होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली बासी जी और दीगर साथियों के